अभी की क्लास का टॉपिक है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान।
ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले विदेश के किसी एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। पैसों की कमी रहती थी, धीरे धीरे गलत मार्ग पर चला गया। धन कमाने की होड़, नए नए तरीके इजाद किए, ऐसे ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे। पहले पहले दिल खाता था, बाद में जैसे विवेक का खून हो गया। बढ़ता गया बढ़ता गया, सब कुछ कर रहा था अपनी पत्नी के लिए, एक छोटी बच्ची के लिए, परंतु मार्ग कब भटक गया उसे भी पता न चला। नई नई वस्तुएं खरीद कर लाता, बहुत सुंदर घर बनाया, परंतु स्थिति अंदर से डगमग। और एक दिन अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी के लिए, जिनसे उसे बहुत बहुत प्यार था, वो एक कार लेकर आया। वो कार इतनी सुंदर थी, इतनी नई थी कि उसका उस कार में इतना मोह हो गया कि जरा सी भी धूल उस कार में ना बैठने पाए। इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसकी वो छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, उसने उस कार पर खरोच कर कुछ लिखने का प्रयत्न किया, और जैसे ही उसने देखा ये क्या कर रही है, उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर था। सत्य घटना पर आधारित यह कहानी है। उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जैसे ही उस बेटी को देखा उसने इतना गुस्सा किया कि सीधा उसके हाथों पर मारना चालू किया। उसे लहूलुहान हो गए, और फिर उसको लगा ये क्या कर दिया मैंने, और फिर भागकर उसको हॉस्पिटल लेके गया और वहां पर उसकी उंगलियों को काटना पड़ा, एम्पुटेशन। बहुत उसको दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। जब उसकी बेटी ने पूछा कि पापा मेरी उंगलियां वापस कब आएगी, रोने लगा, दुखी होने लगा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। घर एक दिन जब था और बेटी अभी भी अस्पताल में, यकायक कार की याद आई और जाकर देखा कार के पीछे स्क्रैच किया हुआ कुछ लिखा हुआ था जो उसकी बेटी लिख रही थी। उसमें लिखा था आई लव यू डैडी। दुख बहुत बहुत बढ़ गया। सोचता था ये क्या हो गया मुझे अचानक से, क्यों मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई, उस समय कौन से विकार ने पकड़ लिया। आगे क्या हुआ पता नहीं, परंतु ये वही विनाशकाले विपरीत बुद्धि की अवस्था है। जब आत्मा अपने पतन की ओर, चारित्रिक पतन, नैतिक पतन, आध्यात्मिक पतन की ओर बढ़ती है, तो उसके द्वारा ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसे ऐसे छोटे कर्म, ऐसे ऐसे पाप कि जिसके लिए उसको बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। विनाश काल अर्थात कौन सा काल? एक तो विनाश वो है जो होने वाला है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे उस विनाश काल की। एक तो विनाश हमारे देह का भी है, ये दूसरा विनाश, पर हम चर्चा कर रहे उस विनाश की, नैतिक विनाश, आध्यात्मिक विनाश, जहां पर नैतिक मूल्य, जहां पर आध्यात्मिक सिद्धांत, आत्मा भूलती जाती है, भूलती जाती है, रोज रोज एक श्रीमत का खून करते जाती है। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, आज बाप दादा अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस देख रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे देहाभिमान की मिट्टी की ड्रेस पहने हुए हैं, कुछ कुछ बच्चे अवगुण देखने वाली दुर्गंध वाली ड्रेस पहने हुए हैं, कुछ कुछ बच्चे क्रिमिनल आय वाली चमड़ी की ड्रेस पहने हुए हैं, और चौथे प्रकार की ड्रेस बार बार विकर्म करते हुए खून से लहूलुहान श्रीमत का गला घोट घोट कर जो ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस पहने हुए बाप दादा आज देख रहे हैं। चार प्रकार की ड्रेसेस पूछा था बाबा ने, स्वयं से पूछो मैं कौन सी ड्रेस पहना हुआ हूं। बार बार विकर्म करके खून से लहूलुहान वाली ड्रेस, दुर्गंध वाली, मिट्टी वाली कि क्रिमिनल आय वाली, चमड़ी वाली, चमड़ी को देखने वाली ड्रेस, जब ये हो तब समझना विनाश काल है। और जब इस तरह से विनाश काल हो तो बुद्धि क्या करती है, फिर विपरीत दिशा में काम करना चालू करती है। बुद्धि के साथ काम है, कितने? सात। ये सातों काम विपरीत दिशा में होने लगते हैं। विनाश काल जब आए तब बुद्धि विपरीत दिशा में काम करना चालू करती है, उसी दिशा में आगे बढ़ती है, उसी दिशा में और षड्यंत्र करती है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र करती है कि उसमें खुद ही उलझ जाती है। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कैसा जाल हमने बुना, कवि कहता है कि जिसमें मैं खुद ही फंस गया। फंसाया था, बनाया था दूसरों के लिए, खुद ही फंस गए। बुद्धि का पहला काम है टू जज, अर्थात जज करना। बुद्धि का दूसरा काम है टू अंडरस्टैंड, अर्थात समझना। बुद्धि का तीसरा काम है टू इम्बाइब, अर्थात धारण करना। बुद्धि का अगला काम है टू डिसाइड, अर्थात निर्णय करना। बुद्धि का अगला काम है टू डिस्क्रिमिनेट, परखना। बुद्धि का अगला काम है टू रीजन, तर्क करना। और बुद्धि का अंतिम सातवां कार्य है टू मेमोराइज, याद रखना। जब प्रीत बुद्धि होगी तो ये सातों कार्य कुछ और होंगे, जब विपरीत बुद्धि होगी तो ये सातों कार्य कुछ और होंगे। पहले प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि जो भी जजमेंट करेगी वो राइट होगा। जैसे जज यदि एक गलत निर्णय दे दे, एक रॉन्ग जजमेंट दे दे, तो क्या हो जाएगा? कहा जाता है जो गुनाहगार है वो छूट गया तो चलेगा, परंतु जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। जजमेंट पावर, सुबह से लेकर रात तक हमें जज करना पड़ता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, यहां भट्टी चल रही है यहां जाऊं या कहीं घूमने जाऊं फिरने जाऊं, टीवी देखूं या क्लास सुनूं, मुरली पढ़ूं या टाइम वेस्ट करूं मोबाइल टीवी इंटरनेट सोशल मीडिया पर। प्रतिपल निर्णय है, जज करना है चीजों को, व्यक्तियों को, किसके साथ दोस्ती बढ़ानी किसके साथ नहीं, परिणाम क्या होगा। जब प्रीत बुद्धि है तो सारे जजमेंट राइट होंगे, जब प्रीत बुद्धि है तो सारी अंडरस्टैंडिंग, समझना राइट होगा, चीजों को समझ सकेंगे, परिस्थितियों को परखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सब राइट होगा। डिस्क्रिमिनेट, परखना, डिसाइड, निर्णय करना। एक है निर्णय करना टू डिसाइड, एक है जज करना, दोनों में भी सूक्ष्म अंतर है। डिसाइड हम तब करते हैं जब दो विकल्प है, जजमेंट सारी चीजों के लिए, परिस्थितियों को जज कर लेना, व्यक्ति को जज कर लेना, रीजन करना, तर्क वितर्क करना, इस मार्ग पर जाऊं तो क्या परिणाम होगा। व्यक्ति जितने पाप संसार में हुए हैं वो उस इंपल्सिव एक्शन की अवस्था में हुए हैं, थॉटलेस एक्शन, उस समय पता नहीं क्या हुआ और तुरंत वो कर दिया और सारे जीवन भर पश्चाताप। जितने कुकर्म और विकर्म हुए हैं, जाओ जाकर उन कैदियों से, उन पापियों से, उन व्यक्तियों से पूछो कि तुम तो अच्छे थे, वो क्या हुआ? वो कहेगा कि वो 10 मिनट पता नहीं क्या हो गया, ऐसा आवेग, ऐसा तूफान आ गया कि बुद्धि ही पलट गई और पाप हो गया और अब पश्चाताप। मेमोराइज, दिव्य बुद्धि का एक गुण है चीजों को तुरंत ग्रहण करना और उन्हें याद रखना। दो प्रकार के स्टूडेंट है, एक है स्मार्ट स्टूडेंट, एक है सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परंतु याद कुछ नहीं होता है। स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फुल याद कर लेते हैं। दो प्रकार की मेमोरी, एक ट्रेंड मेमोरी, एक अनट्रेंड मेमोरी। ट्रेंड मेमोरी फटाफट फटाफट चीजों को समझ लेती है और उसका जो सार है, निचोड़ है, खींच लेती है। चार पेज की मुरली है, कह क्या रहा है बाबा। कई लोग हमारे पास आते कहते हैं हम लोग मुरली 5 बार पढ़ते हैं परंतु याद कुछ भी नहीं रहता है। शायद विधि गलत है, शायद मेमोरी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सुबह भी कहा था या कल अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था या उन्होंने खुद कहा था, यदि मुझे एक झाड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए और एक कुल्हाड़ी दी जाए तो मैं पहले 4 घंटा कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा और उसके बाद में एक वार से झाड़ को काट दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, इफ आई हैव टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन आई विल फर्स्ट मास्टर दी आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन विथ वन गो आई विल मास्टर दी ऑल इन्फॉर्मेशन। यदि मुझे अपना सारी शिक्षा फिर से चालू करनी है तो मैं सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति को धारण करूंगा, उसको सीखूंगा और फिर एक धक से जितनी ये सूचनाएं हैं संसार में सबको मास्टर करूंगा। बुद्धि तीक्ष्ण, बुद्धि कुशाग्र, बुद्धि शार्प, ये निशानी है प्रीत बुद्धि की। अब जब विपरीत बुद्धि होने लगती है तब क्या क्या होता है, फिर से उन्हीं 7 पॉइंट्स के ऊपर आ जाओ। पहला है जजमेंट। विपरीत बुद्धि जब होगी तो सारे जजमेंट कैसे होंगे, गलत। जो भी जज करोगे बाद में पता चलेगा वो चीज वैसी है ही नहीं जैसे हमने सोचा था। हमने सोचा था ये संबंध बहुत अच्छा है, इस संबंध को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और बढ़ाते गए और एक दिन नरक में फंस गए। सोचा ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और उस फ्रेंडशिप को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप मोर ऑफन देन नॉट टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप। क्या समझकर चालू की थी दोस्ती और किस नरक में पहुंच गए, सोचा ही नहीं था ऐसा भी होगा। जजमेंट, खलास। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, क्या हो रहा है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, दिखाई कुछ नहीं देता है, किसके साथ क्या करना है, कहां जाना, जहां जाओ वहां समस्याएं हैं, जहां जाओ वहां दुख है, ऐसी जीवन की अवस्था है। अंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं रहा ये हो क्या रहा है। शेक्सपियर के हेमलेट की जैसी स्थिति है, टू बी और नॉट टू बी, जीना है या मरना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। त्रिशंकु जैसे बीच में लटके है, ना तो ज्ञान छोड़ के जा सकते ना तो संसार में जा सकते, बीच में है अधर्म में लटके हुए है। दुविधा में दो गई, माया मिली ना राम। माया भी नहीं और राम भी नहीं, बीच में है त्रिशंकु, इन लिंबो। तो विपरीत बुद्धि में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पर आघात होता है। फिर है टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाते, सोचते ही रहते करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, सारा जीवन उसी में चला जाता है सोचते हुए थे, डिसीजन ले ही नहीं पाते, हमेशा दुविधा की ही अवस्था है। जर्मन में बहुत बड़े फिलोसोफर कभी हुए थे, इमैनुअल कैंट, बहुत गंभीर व्यक्तित्व। लोग अपनी घड़ी सेट करते थे उसके टाइम से, उस वो जा रहा है मतलब उतना ही बजा है, इतना समय का पाबंद। एक स्त्री को उससे प्रेम हो गया, उस स्त्री ने बहुत प्रतीक्षा की कि सामने से निमंत्रण आए, पर वो तो फिलोसोफर था, थिंकर था, अपने चिंतन में बिजी रहता था। आखिर उस स्त्री ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, क्या कहना है, क्या मुझसे विवाह करोगे। उसने कहा सोच के बताता हूं, और वो सोचने में लग गया, फायदे क्या है नुकसान क्या है। सोचते सोचते 3 साल हो गए, 3 साल के बाद यह निर्णय लेना लिया, क्योंकि बहुत बड़ा विचारक था वो, कैंट फिलोसफी, निर्णय लिया कि शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा, फायदा है, न करने का एक नुकसान है कि सीखना नहीं मिलेगा, इसलिए वो निर्णय लेता है कि कर लेता हूं, कुछ तो अनुभव हाथ में आएंगे, कुछ अच्छी सी फिलोसॉफी की किताब बाद में लिखूंगा फिर उसके ऊपर, कोई शास्त्र दर्शन शास्त्र। और फिर उस स्त्री के घर जाता है, उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं, वो कहता है आपकी बेटी ने कहा था शादी करने के विषय में, मैं तैयार हूं। वो कहता है उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं अभी, निर्णय ही ले रहा है अभी तक, करूं कि नहीं करूं। विपरीत बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति ही समाप्त हो जाती है। हर चीज में दुविधा है, हर चीज में कंफ्यूजन है। इंजीनियरिंग में जाऊं कि मेडिकल में जाऊं, वहां से कंफ्यूजन चालू। हर छोटी छोटी चीज में कंफ्यूजन है। ये भी विपरीत बुद्धि की निशानी है। अगला है टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिसर्न, परख नहीं पाते। सभी बातें बहुत सूक्ष्म है, परख नहीं पाता व्यक्ति। यदि परख ले सच्चा क्या है, खोटा क्या है, लोगों को नहीं परख पाता कौन कैसा है, क्योंकि जो जैसा है वैसा नहीं दिखाता, कुछ और दिखाता है और धोखा खाता है। बार बार व्यक्तियों से धोखा खाता है, एक से धोखा खाता है फिर सोचता है दूसरा पकड़ लूं, दूसरे से धोखा खाता है फिर सोचता है अब तीसरा पकड़ लूं। एक विदेश में व्यक्ति था, 8 बार शादी की, पहली शादी की, बाद में पता चला पत्नी थोड़ी गलत है, छोड़ दिया, सोचा ये ठीक नहीं है, फिर दूसरी से, फिर पता चला थोड़े समय के बाद ये भी ठीक नहीं है, उसको छोड़ा, फिर तीसरी, फिर ये भी ठीक नहीं है, चौथी ये भी ठीक, तब फिर धीरे धीरे कुछ और भी समझ में आने लगा, पर भी प्रयोग चालू थे, और लास्ट में प्रयोग ये समझ में आया दोष उस व्यक्ति का नहीं है, दोष इस प्रोसेस में ही है, क्योंकि एक से वैराग आएगा तो दूसरों को पकड़ेगा, सभी से वैराग वो है परखना, वो है समझना। नहीं तो वो अर्थ ही उठाते हैं, कंधा थक गया तो यहां से निकालकर इस कंधे में, फिर यहां से निकालकर इस कंधे में, कंधे बदलते रहते हैं, व्यक्ति वही रहता है। कोई व्यक्ति कभी भी आत्मा को भरपूर या सुख नहीं दे सकता। जब भी कहा सोल इज इन्फिनिट, आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। जो आदि अंत वाले हैं, जो जन्म ले रहे और मर रहे हैं, वो उस अनादि आत्मा की प्यास को कभी नहीं बुझा सकते। तो पावर टू डिसर्न, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति नष्ट होती है। फिर है पावर टू इम्बाइब, धारण करने की शक्ति। पवित्रता के विषय में पढ़ रहे, पवित्रता के विषय में सुन रहे, वहीं ब्रह्मचर्य के विषय में बातें कर रहे, बाबा की मुरलियों में आए हैं, बच्चे पवित्र बनो पवित्र बनो, पता सब है पर अवस्था दुर्योधन की जैसी है। पता सब है, जो मैंने किया सब गलत है, लाक्षाग्रह नहीं करना चाहिए था, भीम को मारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए था, छल कपट युद्ध कीड़ा द्रौपदी वस्त्र हरण सब पता है, मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु हे गोविंद मैं क्या करूं, मैं विवश था। पता सब है, सत्य क्या है असत्य क्या है, पर करने की शक्ति नहीं है, सत्य को धारणा की शक्ति नहीं है। क्योंकि अंदर विनाश काल चल रहा है, श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, खून कर रहे विवेक का अपने ही हाथों से, अपने ही सीने में खंजर। पता है ये सब करना चाहिए, फिर भी हालत हमारी उस शराबी की तरह ही है, सारे दिन भर सोचता है आज शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, शाम आते ही अपने आप कदम मधुशाला की ओर चल पड़ते हैं, अपने आप कोई बोलता नहीं है, दिन भर पड़ रहा है नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, बहुत नुकसान होता है, पैसे भी बहुत जाते हैं, ये होता है वो होता है, शाम जैसे ही आती है पहुंच जाता है, फिर वही फिर वही फिर वही एडिक्शन, बार बार कोई भी कर्म करो तो संस्कार और फिर एडिक्शन, लत और आदत बन जाती है और फिर वो अपने आप काम करती है। फिर धारणा कहां से होगी? पढ़ रहे हैं, मुरली रोज हाथ में है, रोज पॉइंट्स हजारों लिखी हुई है, डायरिया भर दी है, परंतु सब डायरियों में है, इधर कुछ नहीं, इधर खाली है। फिर है रैशनलाइज या फिर रीजन, पावर टू रीजन, तर्क करने की शक्ति, बुद्धि तर्क करती है। जिसकी तर्क शक्ति जितनी तीव्र होगी वो उतना ही आगे होगा। जिसका तर्क उसको बताता है कि ये अगर किया तो परिणाम ये है, आगे की सोचता है, दूरांदेशी, ये अगर किया तो परिणाम ये है, दूर का सोच लेना, तर्क से अपनी को समझा देना, जबरदस्ती नहीं करना, सप्रेशन नहीं करना, दमन नहीं करना। मन बच्चा है, बुद्धि छोटी है अभी, उसको समझाओ क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या चाहिए। मेमोराइज, टू मेमोराइज। बुद्धि का एक काम क्या है? याद रखना, याददाश्त। एक है ज्ञान, दूसरा है परमात्मा की याद। जब ज्ञान ही याद नहीं तो उस परमात्मा की याद भी कहां से होगी? इसलिए रोज की मुरली से कुछ पावरफुल पॉइंट्स आते हैं, उसको अलग से लिखो और कई बार उसको रिवाइज करो। तब तक उसको रिवाइज करो जब तक मानस पटल पर अंकित ना हो जाए। बाप तुम बच्चों को, लास्ट सीजन के लास्ट सीजन की अव्यक्त मुरली शांतिवन, बाप तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो कि तुम्हारी बुद्धि में छपाई हो जाती है। अपनी मेमोराइजेशन पावर को भी बढ़ाना है, मेमोरी पावर। और मेमोरी के तीन आधार है, अगर एक ट्रायंगल निकालो तो तीन आधार है। एक है एसोसिएशन, एसोसिएट अननोन विद द नोन, जो पता है उसके साथ जो नहीं पता उसको जोड़ना, जो पॉइंट अभी आई है, जो नहीं है, जो पहले से पता है उसके साथ जोड़ देना। लॉ ऑफ एसोसिएशन, जोड़ते जाना। साकार मुरली को अव्यक्त से जोड़ो, आज की साकार मुरली का पॉइंट कल की साकार मुरली से जोड़ो, जोड़ना चालू करो। ये पॉइंट के विषय में इसके पहले बाबा ने अब तक क्या क्या कहा है, ये कोई नई पॉइंट नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार आया है, जोड़ते जाना पीछे। लॉ ऑफ एसोसिएशन, जैसे हम देखते हैं चंडीगढ़ में सब जगह सेक्टर 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 है। हमने कईयों को पूछा आपको ये याद रहते हैं, वो कहते हाँ बिल्कुल याद रहते हैं, इसमें तो याद न रखने की कुछ बात ही नहीं है। पर जो नए आए, जैसे हम, इधर जाना है कौन सा सेक्टर है, 41 है, 42 है, क्या है, कैसे याद रखे? और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, क्योंकि माइंड ने एसोसिएट करके रखा है ये सेक्टर, ये ये ये, एक प्लान इधर मेंटल मैप बन चुका है। उसी तरह मुरली को भी इसी तरह से एक एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन से सारा जोड़ देना, एक हो जाए वो, जोड़ते जाना। अननोन विद द नोन, अंडरस्टूड विद द अनअंडरस्टूड विद द अंडरस्टूड। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंटरेस्ट। एक छोटा सा लड़का, उसको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, परंतु उसको कुछ याद नहीं है, परंतु टीवी देखता है, उसको पता है पिछले साल क्रिकेट में किसने कितने मैच बनाए। क्या उसकी बुद्धि कम है? बुद्धि कम नहीं है, इंटरेस्ट उसका उसमें है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट, उसको वो उतना याद रहेगा। मुरली याद नहीं है, शायद इंटरेस्ट कम है, मानना पड़ेगा पहले तो। इंटरेस्ट को बढ़ाओ। तीसरा है लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग, कुछ तो ऑड, कुछ तो अजीब करो उसमें, वही वही चीजें अगर रही तो याद नहीं रहते, उसको अलग कर दो। जैसे अभी यहां पर क्लास चालू है, यहां समझो एक जोकर का ड्रेस पहन के भाई आ जाए और नाचने लगे तो वो दृश्य याद रहेगा। रोज मुरली चलती है, भूल रहा है, परंतु एक दिन उस मुरली में बीच में कुछ हो जाए गड़बड़ तो वो दिन याद रहता है। कुछ तो अलग, कुछ तो अलग हटके अगर चीजें रही तो वो याद रहती है। कोई भी चीज याद रखी है उसमें कुछ तो नया ला लेना तो याद रहेगी। द लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग, स्ट्रेंज थिंकिंग, ये तीन नियम है। तो हम थे पावर टू मेमोराइज। बुद्धि का एक लक्षण क्या है? मेमोराइज करना। जब प्रीत बुद्धि है तो सारा ज्ञान मेमोराइज होगा, जब विपरीत बुद्धि है तो कुछ भी याद नहीं। तो ऐसे प्रीत बुद्धि भव। अच्छा, ओम शांति।